आशिका को इशिका के एक्सीडेंट के बारे में पता चला था। वो बिना सोचे समझे खुद को हाइड करके इशिका से मिलने अस्पताल पहुंच चुकी थी। वहीं जब उसने इशिका के रूम के आगे अभिमन्यु के साथ अभिमान को देखा तो वो कुछ देर के लिए छुप गई थी। वहीं इशिका की हेल्थ अपडेट देने के लिए उसके कुछ चेकअप करने के बाद डॉक्टर रूम से बाहर आए थे। उन्होंने इशिका के प्रेग्नेंट होने की बात पूछी तो अभिमन्यु को इशिका की प्रेग्नेंसी की बात याद आई। इतनी भयंकर एक्सीडेंट के बाद जहां इशिका को अब तक होश नहीं आया था, वहां अभिमन्यु को दिल ही दिल में डर लग रहा था कि कहीं एक बार फिर उनके बच्चे को कुछ हो ना जाए। अगर इशिका की प्रेग्नेंसी इस बार भी टर्मिनेट हो जाती तो वो उसका सामना नहीं कर पाता। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, खुशकिस्मती से इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी बच्चा ठीक है। हमें उनके ट्रीटमेंट के दौरान ध्यान देना होगा। आपको पहले बता देना चाहिए था, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो प्रेग्नेंसी में नहीं दी जा सकती। इशिका के एक्सीडेंट का असर उसके प्रेग्नेंसी पर नहीं हुआ था, ये सुनकर अभिमन्यु ने राहत की सांस ली। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरी गलती है जो मेरा इस तरफ ध्यान नहीं गया। प्लीज डॉक्टर, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे का ख्याल रखिएगा। अगर आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत है तो मैं अब्रॉड से भी डॉक्टर की टीम बुला सकता हूँ। नहीं मिस्टर राजवंश, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। हमें उम्मीद है कि उन्हें आज शाम तक होश आ जाएगा, डॉक्टर ने बताया और फिर वहां से चले गए थे। उनके जाते ही अभिमान ने अभिमन्यु को तसल्ली देते हुए कहा, आपको थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। उनकी तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ मिल गई है, बच्चा बिल्कुल ठीक है और आई होप होश आने के बाद उनकी रिपोर्ट्स भी क्लियर आएंगी। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी। इशिका के एक्सीडेंट के बाद से ही उसने कुछ नहीं खाया था, वो काफ़ी थका हुआ भी नज़र आ रहा था। केशव ने अभिमन्यु को समझाते हुए कहा, मैंने प्राइवेट रूम बुक किया है, पृथ्वी तुम्हारा बेसिक सामान लेकर आता होगा, नहाकर कुछ खा लो। बस शाम तक की बात है मिस्टर सिंघानिया, जब उसे होश आ जाएगा उससे बात करने के बाद सब कर लूंगा, अभिमन्यु ने जवाब दिया। अभी भी वो जिद पर अड़ा हुआ था। जब अभिमन्यु ने केशव की नहीं सुनी तो राधिका बोली, क्या तुम्हें हम पर यकीन नहीं है कि हम इशिका का ख्याल रखेंगे? वो हमारी बेटी है अभिमन्यु, हम तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है मिसेस सिंघानिया कि मुझे आप पर यकीन नहीं है, बस मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना है। पहले उसे अकेला छोड़कर गलती कर चुका हूँ। रही बात मेरी तो इशिका अंदर बेहोश है, ऐसे हाल में मैं आराम कैसे कर सकता हूँ, अभिमन्यु ने भारी आवाज में कहा। राधिका और केशव अभिमन्यु को समझाकर थक गए थे, वो उनकी सुन नहीं रहा था। अभिमान अभिमन्यु के पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, ये सही कह रहे हैं, आपको अपनी केयर करनी चाहिए। इशिका को होश आया और उन्होंने आपको इस हाल में देखा तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपने कुछ नहीं खाया और थोड़ी देर भी रेस्ट नहीं किया तो उनके होश में आने तक आप खुद फेंट हो जाओगे। आप मेरे साथ चलिए, बाहर कहीं नहीं जाएंगे, हॉस्पिटल के कैंटीन एरिया में ही चलते हैं। अगर फिर भी आपको वहां तक भी जाने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको यहां पर कुछ खाने के लिए ला देता हूं। लेकिन अभिमान, अभिमन्यु फिर से उसे मना करना चाहता था, लेकिन अभिमान ने इस बार उसके बिना सुने उसका हाथ पकड़कर खींचना शुरू कर दिया था। अभिमान, मेरी बात तो सुनो, तुम इस तरह मुझे खींचकर कहां लेकर जा रहे हो? अगर इशिका को होश आ गया तो, अभिमन्यु चलते हुए बोला। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था पर अभिमान ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। चलते हुए अभिमान रुका और उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, डॉक्टर ने शाम तक का टाइम दिया है और आपको ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे लगेंगे। चाचू, मुझे जिद नहीं करनी है, हमेशा आप मुझे समझाते हो तो मैं बिना सवाल के आपकी सारी बातें मानता हूँ। हालांकि कुछ चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होती, फिर भी मैं आपको सुनता हूँ। अपनी बात खत्म करके अभिमान जबरदस्ती अभिमन्यु को वहां से ले गया। केशव और राधिका उन्हीं की तरफ देख रहे थे। ये कौन है? मैंने इसे पहली बार देखा है, राधिका ने पूछा। ये दिग्विजय राजवंश की फैमिली से है, अभिमान राजवंश, राजवंश फैमिली का दूसरा ऐसा शख्स जो अभिमन्यु के लिए सच में मायने रखता है, केशव ने बताया। चलो, राजवंश फैमिली में कोई तो है जो अभिमन्यु का भला भी सोचता है, राधिका ने हल्का मुस्कुराकर कहा। वहीं अभिमन्यु और अभिमान के वहां से हटते ही आशिका को इशिका के बारे में पूछने का मौका मिल गया था। वो दूर से अभिमान को अभिमन्यु को वहां से ले जाते हुए देख रही थी। आशिका जल्दी से केशव और राधिका के पास आई। उसने आईसीयू की तरफ देखकर पूछा, उन्हें होश कब तक आएगा? डॉक्टर ने शाम तक का कहा है, लेकिन तुम कौन हो? जहां तक मुझे पता है इशिका की सिर्फ एक ही फ्रेंड थी और वो क्रिस्टल है, राधिका ने हल्का चौंक कर पूछा, क्योंकि आशिका अचानक से उसके सामने आ गई थी। वो पहले किसी लड़के की तरह लग रही थी, लेकिन उसने अपना मास्क और ग्लासेस निकाले तो राधिका को पता चला कि वो लड़की है। आप उन्हें मेरी फ्रेंड की तरह ही समझिए, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और वो मेरी बड़ी बहन की तरह है। मेरा नाम ऐश है, आशिका ने धीमी आवाज में बताया। आशिका के बताते ही केशव और राधिका को याद आया, जब 2 महीने पहले रायकन एम्पायर पर साइबर अटैक हुआ था तब ऐश ने ही उनकी मदद की थी। राधिका ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ याद आया, तुम तो वो हैकर? उसकी बात पूरी होने से पहले ही आशिका ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा। वो खुलेआम इस तरह उसकी आइडेंटिटी नहीं बता सकती थी, ऐश कोई नॉर्मल हैकर नहीं थी, वो डार्क वेब की नंबर वन हैकर थी। अच्छा सॉरी बेटा, मुझे ख्याल नहीं रहा, मुझे नहीं पता था कि तुम मुंबई आई हुई हो। राधिका ने तुरंत अपनी गलती पर माफी मांगी। कोई बात नहीं आंटी, इशिका के एक्सीडेंट का सुना तो मैं भी उनसे मिलने के लिए खुद को रोक नहीं पाई। मैंने सुना कि उन्हें अब तक होश नहीं आया है, आशिका बोली। डॉक्टर ने शाम तक का कहा है, तुम चाहो तो रुक सकती हो, केशव ने जवाब दिया। नहीं, मैं इतने टाइम तक यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। अगर इशिका को होश आ जाए तो आप मुझे प्लीज मैसेज करके बता दीजिएगा, मैं फिर उससे मिलने के लिए आऊंगी। इतना कहकर आशिका ने राधिका को अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए थे। इशिका को एक नजर बाहर से देखने के बाद आशिका वहां से वापस जाने के लिए निकल गई। जल्दबाजी में उसने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था, ये सोचकर आशिका हॉस्पिटल के कैंटीन एरिया में आ गई थी। लेकिन जैसे ही उसने वहां अभिमान और अभिमन्यु को देखा तो वो अंदर आने से पहले ही वापस पीछे पलट गई। अजीब मुसीबत है, जहां भी जाती हूँ मिस्टर राजवंश सामने आ जाते हैं, आशिका ने मन ही मन बड़बड़ा कर कहा और जल्दबाजी में वहां से जाने लगी। तेज कदमों से चलते हुए आशिका एक लड़की से टकरा गई थी, जिसने अपने हाथ में कॉफी का ग्लास पकड़ा हुआ था। आशिका के टकराने की वजह से सारी कॉफी आशिका और उसके कपड़ों पर आ गई थी। आर यू ब्लाइंड और व्हाट, देखकर नहीं चल सकते तुम लोग, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, खूबसूरत लड़की देखी नहीं और बस टकराने के बहाने चाहिए, मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छे से जानती हूँ, वो आशिका को लड़का समझकर उसे भला बुरा सुनाने लगी। तो वहीं आशिका ने जैसे ही उसका चेहरा देखा उसकी आंखें फैल गई थी। उसे पर चिल्लाने वाली लड़की कोई और नहीं आशिका की सौतेली बहन सलीना हिल थी। आशिका ये तो जानती थी तृप्ति मुंबई आई है, उसे सलीना के आने के बारे में कोई खबर नहीं थी। ऊपर से ये तो उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस तरह इतनी जल्दी उसकी राहें उनसे टकरा जाएंगी। सलीना आशिका पर चिल्लाई जा रही थी, उसके कोई जवाब न देने पर सलीना को और गुस्सा आया। वो तेज आवाज में बोली, एक तो गलती की और ऊपर से सॉरी बोलने में तुम्हारा ईगो हर्ट हो रहा है, तुम जैसे लड़कों को सबक सिखाना मुझे अच्छे से आता है, अभी पुलिस और सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकलवाती हूँ।
सलीना के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों का ध्यान उसकी तरफ खिंच गया था। आशिका किसी तरह का सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, अगर वो एक शब्द भी बोलती तो शायद सलीना उसे पकड़ सकती थी। ये सोचकर आशिका उसे टालते हुए जाने लगी, लेकिन सलीना ने उसकी जैकेट पकड़कर उसे पीछे खींच लिया था। वहीं अस्पताल के कैंटीन पर चिल्लाने की आवाज सुनकर अभिमन्यु ने सिर पकड़कर कहा, क्या लोगों में इतना भी बेसिक सेंस नहीं कि अस्पताल में नहीं चिल्लाना चाहिए? थके होने की वजह से अभिमन्यु के सर में तेज दर्द हो रहा था। आप 2 मिनट रुकिए, मैं बस आता हूँ, बस प्लीज इसे खत्म कर दीजिएगा, अभिमान बोला और मामले को सुलझाने के लिए खुद ही चलकर दरवाजे के पास आ गया था। आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर, ये हॉस्पिटल है, कोई रोड नहीं जो तुम लोग यहाँ पर शोर मचा रहे हो, अभिमान वहां जाकर धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोला। गलती इस लड़के की है जिसने मुझे छेड़ने की कोशिश की, सलीना आशिका को घूरते हुए बोली और फिर उसकी नजर अभिमान पर गई तो वो एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई थी। अभिमान उस वक्त गुस्से में लग रहा था, फिर भी वो उसे खोई हुई निगाहों से देखने लगी। अचानक उसके मुंह से निकला, ही इज रियली हैंडसम। उसने तुरंत ही अपना टोन नीचे किया और बोली, मुझे बस ऐसे लड़कों से चिढ़ है जो जानबूझ पर लड़कियों से टकराते हैं ताकि उन्हें छू सकें। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगे मिस्टर और मेरी हेल्प करेंगे। सलीना अभिमान से काफी नरमी से बात कर रही थी। अभिमान ने तो ठीक से उसकी तरफ देखा ही नहीं था, क्योंकि जब उसकी नजर आशिका पर गई तो वो उसे तुरंत पहचान गया था। ऐश यहाँ क्या कर रही होगी, तो हमारी तरह इसे भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये लड़का है, लेकिन ऐश इसके सामने मास्क और कैप क्यों नहीं निकाल रही है? अभिमान खोई हुई निगाहों से ऐश की तरफ देख रहा था। आपको भी इस पर गुस्सा आ रहा होगा, मुझे भी आ रहा है, मेरा नाम सलीना हिल है, मैं एलए से कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए आई हूँ, आप कहते हैं तो मैं इसे जाने देती हूँ, क्यों ना हम बैठकर बात करें। सलीना अभिमान से मिलने का मौका जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो उसे एक ही नज़र में पसंद आ गया था। अभिमान ने तुरंत नामे सिर हिलाया और आशिका का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, ये लड़का मेरे साथ है और मेरा फ्रेंड है, कुछ बोल नहीं रहा क्योंकि ये बोल नहीं सकता है, इसे सुनाई भी नहीं देता, आई होप कि आप अब सिचुएशन को समझ गई होंगी। आशिका हैरानी से अभिमान की तरफ देखने लगी, अभिमान ने उसे बचाया था इसका मतलब उसने उसे पहचान लिया था। अभिमान आशिका को पकड़कर वहां से ले जाने लगा, तभी पीछे से सलीना जल्दी से चलते हुए उसके सामने आ गई। वो बोली, ओ मुझे नहीं पता था कि ये बोल नहीं सकता, मैं इसे पर्सनली सॉरी कहना चाहती हूँ, क्यों ना आज रात हम डिनर पर मिले। सलीना अभिमान में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही थी, आशिका उसके इरादे अच्छे से समझ सकती थी। अभिमान को देखकर ही पता लग रहा था कि वो अच्छा खासा अमीर खानदान से है, ऊपर से दिखने में भी वो हैंडसम था। सलीना को जब भी कोई पसंद आता था तो वो इसी तरह उसके पीछे पड़ जाती थी। आशिका को उसकी जिंदगी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों जब वो अभिमान में इस तरह इंटरेस्ट दिखा रही थी तब आशिका को अच्छा नहीं लग रहा था।
अभिमान ने उसके सामने झूठ बोल दिया था कि आशिका बोल और सुन नहीं सकती। इस कुछ ऐसे आशिका लाचार हो गई थी, वरना वो इसी वक्त अभिमान को उसकी सच्चाई बता देती। आशिका के बिना कुछ बोले ही अभिमान ने तुरंत मना करते हुए कहा, फिलहाल मैं कुछ दिनों के लिए बिजी रहने वाला हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी डिनर पर जा पाऊंगा, बाद में मिलते हैं मिस। अभिमान सेलिना को टालकर जल्दी से आशिका को लेकर वहां से निकल गया था। उसे किसी तरह अभिमन्यु को ब्रेकफास्ट करवाना था और वो कर चुका था। निकलने से पहले अभिमान ने जल्दबाजी में अभिमन्यु को मैसेज छोड़ा। वहीं आशिका को लेकर अपनी गाड़ी के पास आते ही अभिमान ने उसे पैसेंजर सीट पर बैठने का इशारा किया। इस वक्त उसकी आंखों में कई सवाल थे। आशिका ने खुद ही सिक्योरिटी डिमांड की थी, उसके बावजूद वो अकेले वहां चली आई थी। ऊपर से वो सेलिना से बात करने से कतरा रही थी। सेलिना ने यही कहा था कि वो एले से आई है और आशिका भी वहीं से थी, इसका मतलब वो कुछ तो छुपा रही थी। आप अपना काम कर सकते हैं मिस्टर राजवंश, मेरे लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है और थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी। आशिका उसे टालते हुए जाने लगी, क्योंकि उसे अभिमान के किसी सवाल का जवाब नहीं देना था। आशिका ने अपना एक ही कदम आगे बढ़ाया था कि अभिमान ने उसकी कलाई को पकड़ा और खींचते हुए गाड़ी के लगा दिया था। उसने आशिका के दोनों हाथों को कसकर पकड़ रखा ताकि वो जा ना सके। अपनी लाइफ के बारे में भले ही मत बताओ, लेकिन यहाँ क्या कर रही थी और उससे क्यों बच रही थी ये तो बताना पड़ेगा। चुपचाप गाड़ी में बैठो, अभिमान ने उसे घूरते हुए कहा और जबरदस्ती उसने आशिका को गाड़ी की पैसेंजर सीट पर धकेल दिया था। अभिमान, जिसे अब तक निशा के अलावा किसी की सेफ्टी की परवाह नहीं थी, न जाने क्यों वो आशिका को लेकर इतना परेशान हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस वो उसे हर चीज से प्रोटेक्ट करना चाहता था। शायद इसकी एक वजह ये भी थी कि आशिका उसे किसी की याद दिलाती थी।